ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। अपनी औसत तिथि से 15 दिन पहले मॉनसून ने नेपाल में किया प्रवेश। देश के ज्यादातर हिस्सों में औसत से अधिक बारिश होने का मौसम विज्ञान विभाग का है अनुमान। अगले वर्ष के लिए प्रस्तुत बजट को अर्थमंत्री पौडेल ने बताया आमद और खर्च के हिसाब से वस्तुनिष्ठ। संसद को प्रभावकारी बनाने के विषय में सभामुख ने संघीय संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले दलों के प्रमुख सचेतकों से किया विचार विमर्श। और मध्य नाइजीरिया में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में कम से कम 110 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में अपनी औसत तिथि से 15 दिन पहले मॉनसून ने प्रवेश कर लिया है। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने आज एक बयान जारी कर ये बताया है कि बीते गुरुवार रात को मॉनसून नेपाल में पूर्व से प्रविष्ट होकर कोशी प्रदेश के अधिकांश भूभाग में फैल चुका है। विभाग के मुताबिक कोशी प्रदेश के ज्यादातर मौसम केंद्रों में हल्की से मध्यम मॉनसूनी बारिश हुई है। विभाग के महानिदेशक कमल राम जोशी ने साफ किया कि नेपाल में मॉनसून के प्रवेश करने की औसत तिथि जून 13 है, लेकिन इस बार मॉनसून मई 29 को ही आ पहुंचा। विभाग ने बताया है कि इसी जेठ 18 यानी परसों से आश्विन 14 गति तक 4 महीने के दरमियान देश के ज्यादातर हिस्सों में औसत से अधिक बारिश होने की संभावना है। महानिदेशक जोशी ने यह भी बताया कि औसत से अधिक बारिश होने की संभावना 35 से 45% तक है। उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल ने कहा कि कल संसद में प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष के बजट को क्रियान्वित करने को वे अपनी पहली प्राथमिकता में रखकर काम कर रहे हैं। आर्थिक वर्ष 2082-83 के बजट के संदर्भ में आज अर्थ मंत्रालय में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्थमंत्री पौडेल ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि बजट क्रियान्वयन के लिए वे सावन का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि आज से ही क्रियान्वयन की शुरुआत कर देंगे। ये कहते हुए कि बजट का आकार बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है, अर्थमंत्री पौडेल ने बजट को वस्तुनिष्ठ बताया। उन्होंने आगे कहा कि बजट में विकास खर्च को बढ़ावा देने के साथ ही चालू खर्च को निश्चित सीमा के भीतर रखा गया है और प्रदेशों और स्थानीय तहों में जाने वाली वित्तीय हस्तांतरण रकम बढ़ाने की नीति अपनाई गई है। मौके पर राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्राध्यापक डॉ शिवराज अधिकारी और नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर डॉ विश्वनाथ पौडेल ने बजट के सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा की थी। सभामुख देवराज घिमिरे ने संघीय संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख दलों के प्रमुख सचेतकों के साथ आने वाले दिनों में संसदीय अभ्यास को और अधिक चुस्त, व्यवस्थित और प्रभावकारी बनाने के विषय में विचार विमर्श किया। सुदूर पश्चिम सरकार ने आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 के लिए नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। सुदूर पश्चिम ने अपने नीति तथा कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास को प्राथमिकता दी है। बता दें कि प्रदेश सरकारों द्वारा नया बजट आषाढ़ 1 गते को लाए जाने की संवैधानिक व्यवस्था है। परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देववा और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच आज हांगकांग में द्विपक्षीय वार्ता हुई। विदेश मंत्री वांग के निमंत्रण पर मध्यस्थता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापना संबंधी महासंधि पर हस्ताक्षर समारोह में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में सहभागी होने के लिए हांगकांग में मौजूद मंत्री डॉ राणा और चीनी विदेश मंत्री के बीच भेंटवार्ता हुई है। इस दौरान उनके बीच जलवायु परिवर्तन सहित आपसी हितों के बारे में बातचीत हुई थी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G वीडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G आफ्नो भन्य आफ्नै हो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
नेपाल टेलीकॉम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का ने कहा कि बाढ़ से हो सकने वाली क्षति न्यूनीकरण के लिए पूर्व सूचना प्रणाली को प्राथमिकता में रखा गया है। प्रतिनिधि सभा पूर्वाधार विकास समिति की आज सिंह दरबार में हुई बैठक में उन्होंने ये बात कही। आत्मनिर्भरता हमारा अभियान के नारे के साथ आज 7वां राष्ट्रीय महिला अधिकार दिवस विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय द्वारा आज काठमांडू में आयोजित समारोह को मंत्री नवल किशोर शाह सोडी ने संबोधित किया था। ललितपुर में परसों मत्स्येन्द्र नाथ का फोटो दिखाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्रालय ने आज एक सूचना जारी करते हुए काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर जिलों में परसों रविवार को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मध्य नाइजीरिया में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में कम से कम 110 लोग मारे गए हैं। सरकारी अधिकारियों के हवाले से बीबीसी ने यह जानकारी दी। नाइजर राज्य आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी एनएसईएमए के प्रमुख अबुल्लाही बाबा अराह ने बताया कि बारिश कई घंटों तक जारी रही। उन्होंने कहा बाढ़ का पानी बढ़ने से 50 से ज्यादा घर और उनमें रहने वाले लोग बह गए। आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक मोकवा शहर के टिफिन, माजा और अंगुआन होसावा जिले में इस बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। नाइजीरिया को 2022 में भी भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा, जिसमें लगभग 13 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और 600 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। भारत की अर्थव्यवस्था जनवरी से मार्च की तिमाही के बीच 7.4% बढ़ी है, जो कि उसकी पिछली तिमाही में 6.2% थी। ये आंकड़ा विश्लेषकों की उम्मीदों से कहीं बेहतर बताया जा रहा है। हालांकि पूरे 2024-25 वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल से मार्च तक के लिए विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है, जो कि बीते 4 वर्षों में सबसे धीमी रहेगी। देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जून के आखिर में बैठक होने जा रही है और उम्मीद है कि विकास को बढ़ावा देने के लिए वो लगातार तीसरी बार ब्याज के दरों में कटौती करेगा। भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। हालांकि 2023-24 के वित्तीय वर्ष में 9.2% की ऊंची विकास दर दर्ज की गई थी, जिसमें भारी गिरावट आई है। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को पिछले वित्तीय वर्ष में कृषि क्षेत्र की मजबूत वृद्धि, लगातार सरकारी खर्च और ग्रामीण मांग में सुधार से फायदा हुआ, भले ही इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग और निजी कंपनियों की ओर से नए निवेश कमजोर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अपनी औसत तिथि से 15 दिन पहले मॉनसून ने नेपाल में किया प्रवेश। देश के ज्यादातर हिस्सों में औसत से अधिक बारिश होने का मौसम विज्ञान विभाग का है अनुमान। अगले वर्ष के लिए प्रस्तुत बजट को अर्थमंत्री पौडेल ने बताया आमद और खर्च के हिसाब से वस्तुनिष्ठ। संसद को प्रभावकारी बनाने के विषय में सभामुख ने संघीय संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले दलों के प्रमुख सचेतकों से किया विचार विमर्श। और मध्य नाइजीरिया में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में कम से कम 110 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।